नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े और शायद थोड़े असहज करने वाले सवाल से जूझने वाले हैं। जब दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, राजनीतिक उथल पुथल, सामाजिक तनाव, पर्यावरण का संकट, तो क्या मेरे अकेले के सुधर जाने से वाकई कोई फर्क पड़ेगा, या ये सिर्फ खुद को तसल्ली देने वाली एक अच्छी बात है? हमारे हाथ पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा रचित एक बहुत ही दिलचस्प सत्संकल्प लगा है, जिसका नाम है हमारा युग निर्माण सत्संकल्प
जी।
और इसका 18वां सूत्र एक बहुत बड़ा दावा करता है, हम बदलेंगे युग बदलेगा।
वाह।
आज हम इसी दावे की गहराई में उठेंगे और देखेंगे कि क्या एक अकेला इंसान सच में युग बदलने की ताकत रखता है।
जी, और ये सुनने में तो एक नारे जैसा लगता है ना, लेकिन असल में इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक और आप कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान छिपा हुआ है। पूज्य गुरुदेव का मानना था कि हर बड़े बदलाव की लहर, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक व्यक्ति के मन के भीतर उसकी सोच से ही उठती है। आज हम इसी की परतें खोलेंगे कि ये विचार काम कैसे करता है।
चलिए तो फिर यहीं से शुरू करते हैं। नींव है चिंतन, यानी हमारी सोच। सत्संकल्प कहता है कि हमारी दिशा, हमारी काबिलियत, हमारी तरक्की, सब कुछ हमारी सोच पर ही टिका है। ये सुनने में थोड़ा सरल लगता है, लेकिन इसका असर कितना गहरा हो सकता है?
बहुत गहरा। सत्संकल्प इसे बहुत सीधे शब्दों में कहता है, अच्छी ऊंची सोच इंसान को देवता बना सकती है।
देवता?
हाँ, और गिरीवी छोटी सोच उसे असुर बना देती है। मतलब स्वर्ग और नर्क कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे विचारों से ही बनते और बिगड़ते हैं, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसका मतलब है कि हम अपनी परिस्थितियों के लिए किस्मत को या दूसरों को कोसना बंद कर दें।
ये तो सीधे सीधे व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात हो गई, मतलब ब्लेम गेम खत्म। अगर मेरी जिंदगी में कुछ गड़बड़ है तो मुझे बाहर नहीं, अपने अंदर झांकने की जरूरत है।
बिल्कुल। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये कि सत्संकल्प महानता को सिर्फ पैसे या पद से नहीं जोड़ता। वो कहता है कि संकीर्ण और स्वार्थी सोच से शायद आप थोड़ा धन कमा लें, लेकिन मन की शांति और व्यक्तित्व की मजबूती, जो असली दौलत है,
वो कभी नहीं मिल सकती।
कभी नहीं। अगर हम अंदर से छोटे विचार रखेंगे और बाहर बड़ी सफलता की उम्मीद करेंगे तो ये बस एक धोखा है।
ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अपनी सोच सुधारने से मेरी अपनी जिंदगी बेहतर हो सकती है, मुझे शांति मिल सकती है, मैं एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, लेकिन यहाँ दावा सिर्फ मेरे बदलने का नहीं, युग बदलने का है। ये एक इंडिविजुअल लेवल की बात से सोसाइटल लेवल पे इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाता है? ये कनेक्शन थोड़ा समझने में मुश्किल है।
ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और सत्संकल्प इसका जवाब एक बहुत ही सरल तर्क से देता है। समाज व्यक्तियों के समूह का नाम है। व्यक्ति जैसे होंगे, समाज वैसा ही बन जाएगा। इसे एक ट्रैफिक जैम की तरह सोचिए।
ट्रैफिक जैम?
हाँ, कोई एक व्यक्ति ट्रैफिक जैम नहीं बनाता। जैम तब बनता है जब सैकड़ों लोग एक ही समय पर थोड़ा सा स्वार्थी फैसला लेते हैं, बस मैं अपनी गाड़ी आगे निकाल लूं, मैं इस लेन में घुस जाता हूं। जब हर कोई यही सोचता है तो पूरा सिस्टम ठप हो जाता है।
बहुत बढ़िया उदाहरण है, मतलब समाज की समस्याएं कोई हवा से नहीं आती, वो हम सब के छोटे छोटे गलत फैसलों और विचारों का ही एक बड़ा रूप है। ये तो एक तरह का फ्रैक्टल पैटर्न लगता है, जहां व्यक्ति के अंदर का संघर्ष और समाज का बड़ा संघर्ष एक जैसा ही दिखता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि देश की राजनीति या अर्थव्यवस्था की जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, वो असल में लाखों करोड़ों लोगों की पर्सनल इनसिक्योरिटीज और स्वार्थ का ही एक विराट रूप है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही सत्संकल्प का सार है। अगर देश के नागरिक अंदर से कमजोर, डरे हुए और स्वार्थी होंगे, तो वो एक मजबूत और स्वस्थ राष्ट्र कैसे बना सकते? हमारे नेता, हमारे शिक्षक, हमारे डॉक्टर, ये सब कहाँ से आते हैं? इसी समाज के बीच से। अगर लोगों की सोच का स्तर ही गिरा हुआ है, तो हमें ईमानदार और काबिल नेतृत्व कहाँ से मिलेगा? हम हमेशा नेताओं को दोष देते हैं, पर ये नहीं सोचते कि वो भी तो हमारे ही समाज का आईना है।
तो इसका मतलब है कि अगर हमें बाहर बदलाव चाहिए तो काम खुद पर ही करना होगा, और सत्संकल्प में इस खुद पर काम करने को आज के समय का सबसे बड़ा शौर्य और पराक्रम कहा गया है। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आमतौर पर हम बहादुरी का मतलब सरहद पे लड़ने या किसी दुश्मन से भिड़ने से समझते हैं,
और यहाँ बात हो रही है अपने ही अंदर के दुश्मन से लड़ने की। अपनी गलत आदतें, अपनी बेकार की मान्यताएं, अपना आलस, अपना अहंकार, इनसे लड़ना। पूज्य गुरुदेव सत्संकल्प में एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं, जो अपनी अवांछनीय मान्यताओं से नहीं लड़ सकता, वो आक्रमणकारियों से क्या लड़ेगा?
ओह,
जो अपनी विचारणा को नहीं सुधार सकता, वो परिस्थितियों को क्या सुधारेगा?
ये तो बहुत सीधी और चुभने वाली बात है। हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, गुस्सा करना बुरा है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन करते ठीक उल्टा है। ये जो नोइंग डूइंग गैप है, मतलब जो हम जानते हैं और जो हम करते हैं, उसके बीच का फासला, शायद यही असली लड़ाई है।
और सत्संकल्प इसी फासले को कायरता कहता है।
कायरता?
जी, कायरता। हम अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए हजार बहाने बना लेते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, पर जब उन्हें सुधारने की बात आती है तो हमारे पैर कांपने लगते हैं। ये एक तरह की मानसिक गुलामी है जिसमें हम अपनी ही बनाई हुई जंजीरों में जकड़े रहते हैं और बस कुड़कुड़ाते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं।
तो फिर क्या रास्ता बचता है? क्योंकि हम सबने देखा है कि लोगों को पता होता है कि सिगरेट पीना गलत है, फिर भी वो पीते हैं। तो ये नोइंग डूइंग गैप भरता कैसे है? सत्संकल्प में इसके बारे में क्या कहा गया है?
इसका जवाब बहुत शक्तिशाली है। देखिए, सत्संकल्प कहता है कि तर्क और प्रमाण से आप किसी के विचार बदल सकते हैं, उसकी बुद्धि को समझा सकते हैं।
ठीक है,
पर मन में गहराई तक जमी हुई आस्थाओं और आदतों को बदलने के लिए सिर्फ ज्ञान काफी नहीं है। इसके लिए एक ही चीज काम करती है, अपना आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत करना।
यानी वॉक द टॉक,
जो कहो वो करके दिखाओ।
बिल्कुल, अनुकरण की यानी किसी को फॉलो करने की प्रेरणा उपदेशों से नहीं, किसी को वैसा जीवन जीते हुए देखने से मिलती है।
आज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि पर उपदेश कुशल लोग बहुत हैं, जो दूसरों को तो बड़ी बड़ी सलाह देते हैं पर खुद उन पर 1% भी नहीं चलते।
सही बात है।
प्राचीन महापुरुषों की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं, लेकिन वो दूर की बातें लगती हैं।
हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी को अपनी आंखों के सामने मुश्किल हालात में भी ईमानदारी पर टिके देखते हैं या स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करते देखते हैं, तो उसका असर हजारों उपदेशों से ज्यादा होता है। उत्साह हमेशा प्रत्यक्ष से ही उत्पन्न होता है।
इसीलिए सत्संकल्प कहता है कि आज के समय में आदर्शों पर चलने वाले जीवंत उदाहरण चाहिए। हमें अपने आचरण से ये साबित करना होगा कि आदर्शवादिता सिर्फ पुस्तकों में पढ़ने सुनने की बात नहीं है, इसे आज की दुनिया में भी जिया जा सकता है।
लेकिन क्या ये विचार थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है कि तिरस्कार सहने के लिए तैयार रहो, गाली खाने के लिए तैयार रहो? आज की प्रैक्टिकल दुनिया में जहां रेपुटेशन और नेटवर्क ही सब कुछ है, क्या कोई सच में इस रास्ते पर चल सकता है बिना पूरी तरह से साइडलाइन हुए? ये तो बहुत कठिन मार्ग लगता है।
कठिन है, और सत्संकल्प इस बारे में कोई झूठी दिलासा नहीं देता। वो साफ कहता है कि इस रास्ते पे चलने वालों को फूलों की माला और प्रशंसा की उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके ठीक विपरीत उन्हें निंदा, मजाक और विरोध सहने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा।
ये तो बहुत बड़ी चुनौती है, लोग तो थोड़ी सी आलोचना से ही घबरा जाते हैं।
हाँ, और पूज्य गुरुदेव इसकी तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आजादी के दीवानों ने देश के लिए गोलियां खाई थीं, वैसे ही इस विचार क्रांति के सैनिकों को कम से कम गाली खाने के लिए तो तैयार रहना ही होगा।
गाली खाने के लिए?
जी, जो आलोचना से डर गया वो समाज में फैली हुई गलत मान्यताओं और पाखंड के खिलाफ आवाज कैसे उठाएगा।
और सत्संकल्प में ये भी कहा गया है कि आज के कई नेता और धर्मगुरु भी जनता की गलत मान्यताओं को और बढ़ावा देते हैं, ये क्यों होता है?
ये लोक रंजन और लोक मंगल के फर्क के कारण होता है।
लोक रंजन और लोक मंगल?
हाँ, लोक रंजन का मतलब है लोगों को खुश करना, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, ताकि आपकी लोकप्रियता बनी रहे। और लोक मंगल का मतलब है लोगों का वास्तविक भला करना, भले ही इसके लिए आपको कड़वी और अप्रिय बातें कहनी पड़े। आज ज्यादातर लोग लोक रंजन का रास्ता चुनते हैं। राजनेता वोट के लिए जनता की अनुचित मांगे पूरी करते हैं, और कई धर्मगुरु अपने अनुयायियों को खुश रखने के लिए उनकी रूढ़ियों और अंधविश्वासों को सही ठहराते हैं, जबकि वो दिल से जानते हैं कि ये गलत है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस महान बदलाव का नेतृत्व सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसमें मान सम्मान पाने की इच्छा खत्म हो चुकी हो और तिरस्कार सहने की हिम्मत आ गई हो।
बिल्कुल, यही इस युग परिवर्तन की सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये किसी कमजोर दिल वाले का काम नहीं, इसके लिए बहुत मजबूत मनोबल और प्रचंड साहस चाहिए।
तो इन सब बातों का सार क्या है? अगर कोई इस रास्ते पर चलना चाहे तो पहला कदम क्या होगा?
अरकर हमारे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में लाना, पूज्य गुरुदेव का अंतिम आह्वान यही है।
और व्यवहारिक अध्यात्म का मतलब क्या है यहाँ? क्या इसका मतलब है और ज्यादा पूजा पाठ करना?
नहीं, यहां इसका सीधा सा मतलब है अपने अंदर की कमजोरियों से लड़ना। सत्संकल्प कहता है कि हमें अपना सारा साहस बटोरकर अपनी वासनाओं, अपनी लालच, अपनी छोटी सोच और अपने स्वार्थ से लड़ना होगा। इन बंधनों को हिम्मत करके काटना होगा। यही असली तपस्या और यही सच्ची साधना है।
और ऐसा करके हम सिर्फ अपना ही भला नहीं करेंगे, बल्कि एक मिसाल कायम करेंगे। जैसे एक दिया जब जलता है तो वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जलता, वो अपने आसपास की जगह को भी रोशन कर देता है।
एकदम सही। और जब ऐसे कई दिए जलने लगेंगे तो पूरे युग का अंधकार अपने आप मिटने लगेगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी लौ से ही होती है।
इस पूरी चर्चा को समेटने के लिए एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो सत्संकल्प में दिया गया है। आचार्य रामानुज एक सभा में उपदेश दे रहे थे कि भगवान हर प्राणी में है और हमें सब में अपनी ही आत्मा देखनी चाहिए।
हाँ, और उसी सभा में एक चांडाल भी उनका उपदेश बड़े ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ, वो भक्ति भाव से आचार्य के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा।
लेकिन जैसे ही आचार्य ने उसे अपनी तरफ आते देखा, वो क्रोधित हो उठे और डांट कर बोले, दूर रहो, मुझे छुएगा क्या?
तब उस चंडाल ने बड़ी विनम्रता से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप ही ने तो अभी सिखाया कि भगवान कण कण में है। मेरे अंदर भी वही भगवान है जो आपके अंदर है। तो फिर आप ही बताइए कि मैं अपने भगवान को आपके भगवान से दूर कहां ले जाऊं।
यह सुनते ही आचार्य रामानुज सन्न रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उस चांडाल को उठाया और गले से लगा लिया और कहा, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, असली गुरु तो तुम हो।
ये प्रसंग यही दिखाता है कि ज्ञान जब तक आचरण में, व्यवहार में ना उतरे, तब तक वो अधूरा है, बल्कि एक तरह का पाखंड है। आचार्य के पास ज्ञान था, पर उस एक पल के लिए उनका आचरण उस ज्ञान के बिल्कुल उल्टा था। उस चांडाल के एक सरल से सवाल ने उन्हें आईना दिखा दिया।
तो आज की ये गहरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। सत्संकल्प के अनुसार आज के युग में बहादुरी का, शौर्य का असली मुकुट किसके सिर बंधेगा? उनके जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं, मंच से उपदेश देते हैं, या उनके जो चुपचाप बिना किसी दिखावे के अपनी छोटी छोटी दुर्बलताओं और बुरी आदतों से लड़ते हैं और दूसरों के लिए एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है।